नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। अक्षाणवतां फलमिदं न परं विदामः सख्यः पशूननु विवेशयतोर्वयस्यैः वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनु वेणुजुष्टम् जैर्वान्निपीतमनुरक्तकटाक्षमक्षम् अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामः सख्या पशु ननु विवेशयतोर्वयस्यैः वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनु वेणुजुष्टम् जैर्वान्निपीतमनुरक्तकटाक्षमक्षम् अक्षणवतां नेत्र वालों के नेत्र का फलां फल इदां यही है ना ना परां अन्यत दूसरा कोई फल नहीं है। विदा महा हम नहीं जानती सख्य हे सखियों पशु गौ आदि पशुओं को अनु उनके पीछे रहकर विवेश यतो हो प्रवेश कराते हुए वयस्य ही मित्रों के साथ वक्त्रं मुख व्रजेश सुतयो हो नंद महाराज के दोनों पुत्रों के अनुवेणु निरंतर वेणु से लगा हुआ जुष्टम सेवित जय ही जिन नेत्रों के द्वारा या जिन लोगों के द्वारा वा अथवा तू शब्द के लिए वा शब्द निपीतम नितरम पीतम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम अपने स्निग्ध प्रेमियों पर बोले अपने स्निग्ध प्रेमियों पर जो प्रेम से देखते हैं अथवा जिन पर प्रेमी भक्तों के कटाक्ष लगे रहते हैं। तो इसके पहले श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन किए हैं, इति वेम लवम राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा ब्रजस्त्रिय सर्वा वर्णयंत्यो भिरे भिरे। हे राजन, इस प्रकार समस्त प्राणियों के मन को अतिशय प्रिय लगने वाले वेणु ध्वनि को सुनकर ब्रज की सारी स्त्रियां उस वेणु गीत का वर्णन करने लगी और परमानंद घन भगवान श्री कृष्ण का मन ही मन आलिंगन करने लगे। किस प्रकार श्री गोपियां भगवान का वर्णन कर रहे हैं, वेणु गीत का वर्णन कर रहे हैं, इसको यहां से प्रारंभ कर रहे हैं। श्रीपाद श्रीधर स्वामी के अनुसार गोप्य उच्च यह पाठ नहीं है। श्रीपाद श्रीधर स्वामी सनातन गोस्वामी कहते हैं गोप्य उच्च यह पाठ नहीं है, क्योंकि पहले कहा ही गया वर्णयंत्य वर्णन करने लगे। श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं अनुवर्णनम एवं आह, अनुवर्णन को ही प्रस्तुत कर रहे हैं श्री वसुदेव गोस्वामी। जिस प्रकार लोक में आप देखते हैं कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो किसी की बात को जब रिले करता है तो उसकी आवाज सुनाई पड़ने लगती है और जो मुख्य समाचार देता है वो बंद हो जाता है, उसकी आवाज आने लगती है, ये बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार गोपीजनों के बोले हुए वाक्य को यहां उद्धृत कर रहे हैं यथावत। तो गोपियां वर्णन कर रही हैं अक्षणवतां फलमिदं न परम विदामः सख्य पशु ननु विवेशयतुर्वयस्य हि वक्त्रं ब्रजेश सुतयो रनुवेण जुष्टं जैवा निपीत मनुरक्त कटाक्षम अक्षम। इस पर टीका लिखने के पूर्व श्रीपाद सनातन गोस्वामी गोपीजनों की वंदना करते हैं, कहते हैं जासाम बुद्धे तवागर्थो जासामेव प्रसादतः गोपी प्रपद्य ताहजाभी स गंभीरा सयोजितः। मैं श्री गोपीजनों के चरण कमलों में वंदना करता हूं, नमस्कार करता हूं, जिनकी कृपा से ही जिनके वाक्यों का अर्थ समझा जा सकता है। यह यथार्थ बात है, श्री गोपीजनों के श्री राधा रानी आदि की कृपा से ही उनके द्वारा बोले गए वचनों का तात्पर्य समझा जा सकता है। गोपियों की यह महिमा है कि गंभीर आशय है, जिनका अतिशय गंभीर आशय है श्याम सुंदर, वे भी उनके द्वारा वश में किए गए हैं। गंभीर आशय और जीता जो श्री कृष्ण को भी अपने प्रेम बंधन में वश में रखती हैं, ऐसी गोपीजनों के चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूं, जिनकी कृपा से ही उनके वाक्यों का अर्थ समझा जा सकता है। ब्रज स्त्रिय सर्वा इति सर्व शब्द से सामान्य वचनत्वात् नात्र विरोध तदेव किम् इत्याह अक्षणवताम् इत्यादि। इसलिए जीव गोस्वामी व्यादि कहते सर्वा गोप्य वर्णयंत सर्वा ब्रज स्त्रिय वर्णयंत, सारी ब्रज स्त्रियां वर्णन करने लगी, ये सामान्य शब्द है। तो इसमें अगर किसी ने कुछ विशेष बात कहा है तो इसमें कोई विरोध नहीं है, ये नहीं समझना चाहिए सारी गोपियां ही सेम वाक्य बोल रही हैं। और उनके कहने का आशय है जीव गोस्वामी पार्टी जो सुन रही हैं उनके लिए भी यहां वर्णयंत शब्द आया है, सुन रही हैं जो बोल रही हैं एक प्रकार से सामान्य शब्द है, सारी गोपियां सुनने लगे, वर्णन करने लगी और कृष्ण का आलिंगन करने लगी। तो सबसे पहले श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उपक्रम में लिखते हैं कि भो सख्य हे सखियों यूयम यह गृह निगड्डे स्थित्वा विधात्रा दत्तानी चक्षुरादीनी इंद्रियाणि केवलम विफली कुरुद्वे। हे सखियों, इस घर गृहस्थी के दृढ़ बंधन में, बेड़ी में स्थित होकर के, बंध करके तुम सभी लोग, हम सभी लोग विधाता के द्वारा दिए हुए अपने चक्षु आदि इंद्रियों को विफल कर रहे हैं। तत् इसलिए इतः यहां से अद्य वनम द्रुतमेव गत्वा, इसलिए आज यहां से जितना शीघ्र हो सके वन में जाकर, ब्रज से वन में जाकर और एक अद्भुत वस्तु का दर्शन करेंगी और अपने इंद्रियों से उनका अनुभव करेंगी, और इस तरह से अनुभव करके क्यों नहीं अपने जीवन को सफल बना रही हो। ये भाव है कि हमारी इंद्रियां विफल हैं श्याम सुंदर को देखे बिना या उनका शब्द सुने बिना, तो इसलिए श्याम सुंदर के पास चलना चाहिए। जैसा पहले ही कहा गया है कि इन उक्तियों में श्री राधा रानी ही प्रधान हैं बोलने में, उनके साथ और शक्तियां बोल रही हैं अपने अपनी शक्तियों से। तो कहते हैं, हे सखी, सख्य इति जस्माभिरेत मित्रं ज्ञायत एव इति भाव। हे सखियों, सबसे पहले संबोधन है, हे सखियों, बहुत ही प्रेम का सूचक है यह, और इसके द्वारा यह कहा जा रहा है कि मैं जो कुछ भी विवक्षा करने जा रही हूं, बोलने जा रही हूं, इसको तुम पूर्णता समझती हो, तुमको सब कुछ मालूम है। अक्षणवताम, अक्षणवताम का वास्तविक अक्षिमताम, अक्षणवताम के विषय में श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं यह आर्ष प्रयोग है, यह सामान्य व्याकरण का नियम है, नहीं लगता है। आर्ष प्रयोग, अपौरुषेय प्रयोग, ऋषि प्रयोग, तो अक्षणवताम का अर्थ है अक्षिमताम। हे सखियों, जो आंख वाले हैं, केवल मनुष्य ही नहीं, केवल देवता ही नहीं, यहां तक कि पशु पक्षी आदि जो भी आंख वाले हैं, उनके आंखों का इदं फलम, यही फल है। हे सखी, इस संसार में जितने भी आंख वाले हैं, उनके आंखों का यही फल हम जानते हैं, यही फल, और न परम विदामा, अन्य फल हम नहीं जानते हैं। दूसरे लोग जानते होंगे, अगर उनके दृष्टि में दूसरा कुछ फल है आंख का, तो वे जानते होंगे और वे मानते रहे, लेकिन हे सखियों, मेरी दृष्टि में इसके अलावा और कोई भी फल नहीं है आंखों का। आंख का फल क्या है? प्रिय दर्शनम, प्रिय परम सुंदर वस्तु को देखना, यह आंख का फल है। और अक्षणवताम से तात्पर्य अन्य इंद्रियों का भी है, अक्षी का अर्थ इंद्रिय भी होता है। तो इंद्रियवानों के इंद्रिय का यही फल है, ये अद्भुत बात है। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि इदम शब्द पहले क्यों कह रही हैं? उस वस्तु को कह करके कहना चाहिए कि इसके अलावा आंखों का फल और दूसरा नहीं है, लेकिन पहले इदम शब्द का प्रयोग कर रही हैं। न विद्मा, न विद्मा वयम अन्य जना तु अन्य जानन्तु नाम इत्यर्थ ऐसा सलून ठोकती, यह बहुत अफसोस में उक्ति कह रही हैं। यतो अस्माकं चक्षु सापल्यम न किमपि वृत्तम। हे सखियों, भगवान ने, विधाता ने हम लोगों को आंखें दिया, लेकिन हमारी आंखें सफल नहीं हुई। क्यों? तदानीं तथा दर्शनम भावत, हमको ऐसा दर्शन सुलभ नहीं है। क्या फल है, क्या दर्शन कह रहे हैं, इसको बाद में ये कहते हैं। यद्यपि जत्र तत्र जदा तदा जिन तीन प्रकारेण तद्वक्त्र निपानम एवं चक्षु फलम व्रजंतस्तु तासम तदर्शनम सुष्टु फलती एवं। श्रीपा सनातन गोस्वामी कहते हैं कि यद्यपि गोपीजनों को, श्री राधा आदि को, श्री कृष्ण के मुख कमल का निपान, नित्रम पान, मतलब बहुत प्रेम से देखना, दर्शन, या पान शब्द से, निपान शब्द से अभ्रामृत पान आदि भी है, तो यद्यपि श्री कृष्ण का दर्शन और उनके सौंदर्य का आस्वादन समस्त गोपियों को जत्र तत्र जहां तहां जदा तदा जब तब जिन तेन प्रकारेण जिस किसी प्रकार से हो, प्राय होता ही रहता है, परंतु ब्रजांतस्तु तासं तदर्शनं सुष्टु फलत तथापि वन विहारे तदर्शनोत्सुकेन तथोक्तम। यदि ब्रज में जहां तहां दर्शन होता रहता है गोपियों का, श्रीकृष्ण का दर्शन होता रहता है गोपियों के द्वारा, लेकिन वन विहार में तदर्शनोत्सुकेन तथोक्तम, उनकी उत्कंठा, उनकी लालसा बढ़ती रहती है, अतृप्ति बढ़ती रहती है कृष्ण को देख करके। अतः विशेष करके वन विहार में, वृंदावन में विहार करते समय वे दर्शन की उत्सुकता से बात कह रही हैं। अयम एव हि निर्भर प्रेम रह अतृप्त्यार्थी विशेष लक्षण स्वभाव। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रेम का, निर्भर प्रेम का यही स्वभाव है। निर्भर प्रेम का मतलब होता है जो प्रेम कभी पूरा न हो सके, निरंतर बढ़ता रहे, निरंतर बढ़ता रहे, जिसमें अभाव ही अभाव हो। अभाव का अर्थ यह है कि वह प्रेम निर्भर कहा जाता है तब जब वह या तो पूर्ण भरा हुआ हो अथवा बिल्कुल नहीं भरा हुआ। भर का अर्थ है पूरा हो जाना। कोई गोपी जब श्रीकृष्ण को देखती है तो उसे ऐसा ही लगता है बाद में कि मैंने कभी भी कृष्ण को देखा नहीं है, आंख भर कर देखा नहीं है, कब देखूंगी, उनकी सेवा करूंगी, चरण संवाहन करूंगी, पंखा जलूंगी, नृत्य करूंगी, या उनसे टेढ़ी भाषा में बोलूंगी। यह लालसा बढ़ती रहती है। पूर्ण रूप से सौंदर्य का स्वादन करके भी तृप्ति का बोध नहीं होता, अतृप्ति बनी रहती है निरंतर। इसको निर्भर प्रेम कहते हैं। तो निर्भर प्रेम का, निर्भर प्रेम रह अयम एव हि स्वभाव। क्या स्वभाव? अतृप्त्यार्थी विशेष लक्षण स्वभाव, यही स्वभाव है। अतृप्ति का अनुभव हमेशा होता रहता है, और अतृप्ति का ही अनुभव नहीं होता, अतृप्ति आरती। उस अतृप्ति के कारण एक आरती, एक बेचैनी का अनुभव होता है, दुख का अनुभव होता है। तो यही है प्रेम का लक्षण। अतः श्री गोपीजन कहते हैं कि हे सखियो, हमको विधाता ने इंद्रिय दिया, आंख दिया, चक्षुरादि इंद्रिय दिया, लेकिन हमको अपने आंखों का फल नहीं मिला। किम तक इत्याहु, क्या फल है इसको कहती हैं। हे सख्य, वयस्य ही पशुन अनुविवेशयतो हो ब्रजेश सुतयो हो अनुवेल जुष्टम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम वक्त्रम जय निपीतम इदमेव हि अक्षिमताम चक्षुष मतान चक्षुषा फलम। यही फल है। हे सखियों, अपने सखाओं के साथ वयस्य ही, वयस्य का अर्थ है साथी, विशेष करके वयस्क शब्द यह इसलिए दिया गया है कि लगभग जो श्री कृष्ण के उम्र के हैं, वयस किशोर अवस्था के हैं सब बच्चे, यद्यपि उम्र की दृष्टि से, आयु की दृष्टि से वे बच्चे कम हैं, श्री कृष्ण भी बहुत कम हैं, लेकिन वृंदावन में वे पूर्ण किशोर अवस्था में लीला करते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। वह इस तरह से अपने को प्रकट कर लेते हैं। तो वयस्य ही का अर्थ है श्री कृष्ण के समवयस्क मित्रगण, तो अपने मित्रों के साथ वयस्य ही सखभी सह, सखाओं के साथ पशुन गवादिन चार्यत अनुविवेशयत अनु पश्चात स्थित्वा, गायों के पीछे पीछे रह करके श्री कृष्ण उनको वन में प्रवेशयत प्रवेश कराते हैं, यह अर्थ है। आगे नहीं चले जाते हैं, वे सेवक की तरह हैं तो उनको प्रवेश कराते हैं। अनु पश्चात अस्तित्वा बनात बनांतरम विशेषेण प्रवेशेन संकेत मधुर शब्दादिन प्रवेशयत, गायों को प्रवेश कराते हैं तो गायों के प्रवेश कराने के लिए, और इसके साथ ही संकेत मधुर गीत गाते जाते हैं, गौओं को ही सुना करके उनको प्रवेश कराने के लिए नहीं गाते हैं, कुछ शब्द गौओं के लिए गाते हैं, लेकिन अपने आनंद में वृंदावन की शोभा देख करके अपने आनंद में भगवान बांसुरी बजाते रहते हैं, और इस तरह से गौओं को एक वन से दूसरे वन में बनात बनांतरम विशेषेण प्रवेशेन विवेशयत विशेषेण प्रवेशेन संकेत मधुर शब्दादिना प्रवेशयत, गौओं को प्रवेश कराते हैं। तयो उस समय ब्रजेश सुतयो, ब्रजेश के दोनों पुत्रों के मुख को जिन्होंने देखा है और पिया है, उनके आंखों का इंद्रियों का यही फल है, और कोई दूसरा फल नहीं है सर। पर हमको विधाता ने फल नहीं दिया, हमारा जीवन व्यर्थ चला गया, हमारी आंखें हमारी इंद्रियां व्यर्थ चली गई सब। इस प्रकार से अतृप्ति बोध हो रहा है गोपीजनों को, निरंतर देखने की और उनके शब्द सुनने की स्पर्श की वासना हो रही है। ब्रजेश सुतयो, इस पर श्रीपाद सनातन गोस्वामी लिखते, ब्रजेश गोपराज श्रीनंद, ब्रजेश का तो ब्रज के ईश्वर स्वामी श्रीनंद महाराज, तो ब्रजेश गोपराज श्रीनंद एवं तस्य सुतयो राम कृष्ण यो मुखम, बाद में मुखम वक्त्रम लेना चाहिए, ब्रजेश के दोनों पुत्र नंद महाराज के दोनों पुत्र राम और कृष्ण वन में प्रवेश करते हैं, गौओं को प्रवेश कराते हैं, तो उनके मुख को देखना यही आंखों का फल है। तो यह प्रश्न उठता है कि श्री बलदेव जी तो नंद बाबा के पुत्र नहीं हैं, पर उनको भी कृष्ण के साथ ही क्यों कहा जाए कि ब्रजेश के दोनों पुत्र हैं। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि श्री बलदेवस्य अपि तत्सुतत्व व्यवहार दर्शिता एवं, श्रीमद् भागवतम में दिखाया गया है नंद महाराज के पुत्र के रूप में बलराम जी को कई बार कहा गया है। कहते हैं बलदेवस्य अपि तत्सुतत्व व्यवहार दर्शिता एवं, व्यवहार कहा गया, भ्रातर मम सुत कच्चिद मात्रा सह भवत ब्रजे तातम भवंतम मनवानो भवद्भ्याम उपलालितः स्वयं वसुदेव जी कहे हैं इस बात को पांचवें अध्याय में, जब नंद बाबा से भेंट हुई मथुरा में बगीचे में, तब वसुदेव जी कहते हैं भ्रातः मम सुतः कच्चित, हे भैया, वसुदेव जी कहते हैं हे भैया मेरा पुत्र अपने मां के साथ मतलब रोहिणी के साथ आपके ब्रज में ही है ना, कहीं दूसरी जगह नहीं गया है ना, ये पूछ रहे हैं। मात्रा सब भवत ब्रज, आपके ही ब्रज में है ना, कि कहीं आप भी डर करके कम से या इधर उधर कहीं छिपा दिया दूर कर दिए, तो आपके ही साथ रह रहा है ना मेरा पुत्र। तातम भवंतम मनवानो, वो तो आपको ही अपना पिता समझता होगा। श्री वसुदेव जी कह रहे भवंतम तातम मनवानो, तातम भवंतम मनवानो, मेरा बेटा आपको ही अपने पिता समझता होगा। बेचारा कभी देखा नहीं, और देखे भी तो क्या पहचानेगा। छोटे छोटे बच्चों को तो बार बार पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, ये पिता है, ये नाम है, वह नाम है, तब याद कर। भवद्भ्याम उपलालित, मैं जानता हूं कि आप और जसोदा दोनों बहुत ही प्यार से पाले होंगे इनको। ये वसुदेव जी की उक्ति है कि आपको ही वो अपना पिता मानता होगा, ये बात सही भी है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जब श्री बलराम जी द्वारका से वृंदावन आए थे मिले सबसे, तो रामो भी वंद्याथ पितरौ आशीर भीर अभिनंदित। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि श्री बलराम जी अपने माता पिता को प्रणाम किए, और माता पिता जसोदा और नंद आशीर्वाद दिए इनको, तो बलराम जी आशीर्वाद सुनकर के बहुत आनंदित हुए। बेटा जुग जुग जियो, सुखी हो, तुम्हारे शत्रु तुमसे परास्त हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये सब आशीर्वाद दे रहे थे। नंद और जसोदा आशीर्वाद दे रहे थे ये न कह करके श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि माता पिता आशीर्वाद दे रहे थे। इसका अर्थ यह है कि सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं कि ये पुत्र हैं, नंद बाबा के पुत्र के रूप में ही व्यवहार दिखाया गया है भागवत। अतः यदि श्री गोपीजन बलराम जी को भी कह रही हैं कि ये नंद के पुत्र हैं, तो यह कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है, दो प्रमाण यहां आए, वसुदेव जी का वचन और श्रील सुखदेव गोस्वामी का वचन कि श्री बलराम जी भी ब्रजेश तमय हैं, ब्रजेश सुत हैं। ब्रजेश सुतयो अनु निरंतरं वेणुना जुष्टम सेवितम। तो अनुवेणु अलग शब्द भी है और अनुवेणु जुष्टम एक में भी है और अनुवेणु अलग है, जुष्टम अलग, इस तरह से अनुवेणु जुष्टम। ब्रजेश सुतयो कृष्ण और बलराम के निरंतर वेणु से युक्त वेणु वादन परम, यह अर्थ है ऐसे मुख को जो पीते हैं उन्हीं को नेत्रों का फल मिला, अन्य को नहीं। यदि कोई अन्य व्यक्ति मानता है कि आंखों का दूसरा फल है तो मानता रहे, लेकिन ये सकी मेरी दृष्टि में कृष्ण और बलराम के मुख को पीना यही आंखों का फल है, ये हमारा निश्चय है, ये हमारा अनुभव है। तो वक्त्रम की दो विशेषताएं बता रही हैं, वेणु जुष्टम और स्निग्ध कटाक्ष मोक्षम, अनुरक्त कटाक्ष मोक्ष। यह तो भाव है, लेकिन वास्तव में गोपियों का जो वचन है उसका कुछ और अर्थ है। जैसा पहले कहा गया परोक्षम, अर्थांतर से भिन्न अर्थ उसका हो सके, इसके द्वारा वे अपने भावों का गोपन करती है। श्री बलराम जी को कृष्ण के साथ वर्णन कर रही हैं इसके लिए कि जैसे ब्रज में सब लोग कृष्ण बलराम के सौंदर्य से आकृष्ट हैं, उनकी लीलाओं को देखते हैं, बोलते हैं, ऐसे हमको भी अधिकार है बोलने का, लेकिन स्पेशल श्याम सुंदर के विषय में ऐसे नहीं बोल पाएंगी। इसीलिए बलराम जी को रह करके अपने भाव का गोपन कर रही हैं। तो वास्तविक अर्थ इसका यह है, ब्रजेश सुतयो अनु ब्रजेश सुत कृष्ण और बलराम, इन दोनों में अनु जो पीछे रहता है, पीछे वर्तमान रहता है, अनु पश्चातवर्ती न, जस्य मुखम वक्त्रम वेणु जुष्टम, ब्रजेश के दोनों पुत्रों में जो पीछे रहता है क्योंकि कनिष्ठ है, छोटा है, और बलराम जी बड़े हैं, तो वही आगे चलते हैं, कुछ न कुछ आगे रहते हैं, और आगे रखने में, आगे रहने में कारण भी है। श्री बलराम जी को नंद बाबा ने और मां यशोदा ने कहा था कभी कृष्ण को आगे मत जाने देना, कोई भालू पकड़ ले चाहे कुछ हो जाए, कोई जंगली जीव है, तो तुम हमेशा रक्षा करना और आगे मत जाने देना, पीछे पे ही चलाना, और उम्र में छोटे हैं इसलिए कंट्रोल में रहेंगे बलराम जी के। तो ब्रजेश सुतयो अनु, ब्रजेश के दोनों पुत्रों में जो पुत्र पीछे रहता है अनु पश्चातवर्तिन जस्य मुखम वेणु जुष्टम तस् निपानम एव अक्षण फलम इति अर्थ, उसके मुख को पीना, दोनों पुत्रों में से जो पीछे रहता है और जिसका मुख वेणु से युक्त है उसके मुख को हे सखी पीना, निपानम नितरम पानम, यही है नेत्र वालों के नेत्र का फल। तो जिन लोगों ने कृष्ण को इस तरह से देखा है उन्हीं का नेत्र सफल है, उनकी इंद्रियां सफल है, और बाकी सबका जीवन या इंद्रियां निष्फल, ये ऐसे कह रही है। नितरम पीतम, पीतम का क्या अर्थ है? पीतम का अर्थ पिया हुआ, नी नितरम अतिशय, खूब छक करके जिन आंखों ने पिया है श्री कृष्ण के मुख को, जिस मुख पर वेणु सुशोभित रहता है, जिस मुख से बांसुरी बजाते रहते हैं और बलराम जी के थोड़ा पीछे चलते हैं, ऐसे श्री कृष्ण के मुख कमल को, वेणु युक्त मुख को पीना, यही इंद्रियों का फल है। बहुत ही सुंदर वाक्य है। वास्तव में श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि गोपीजनों के वाक्यों का अर्थ उनकी कृपा से ही समझा जा सकता है। ये सब श्लोक बड़ी ही उत्कंठा के साथ और लालसा के साथ और अतृप्ति के साथ बोले गए हैं। श्री गोपियां चाहती हैं कि उनका जो भाव है उसका भी अपलेप करे, सबके सामने प्रकट न करे, परंतु प्रेम इतना बलवान है, जैसा श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि स्मर वेग से विक्षिप्त मन वाली होकर गोपियां अपने भाव को व्यक्त नहीं कर पाती। तो इस श्लोक में व्यक्त हो गया है, इस श्लोक में व्यक्त हो गया अर्थांतर से। श्रीपाद जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि इस प्रथम पद में, प्रथम श्लोक में गोपियों ने बहुत प्रयास किया है कि उनका जो श्रीकृष्ण के प्रति अनुराग है, भाव है, वो छिपा लिया जाए, परंतु अर्थांतर से, दूसरे अर्थ से यह प्रकट हो गया। इसलिए इसके बाद वाले पद में च्युतक प्रियाल बरह में वो पूर्ण रूप से अपने भाव पर पर्दा डाल रही है, केवल कृष्ण बलराम का वर्णन करके दोनों का सामान्य रूप से। तो श्रीपद जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि अपने भाव का अपलेपन कर रही है। अपलेप का अर्थ ये होता है कोई चीज लिखा गया है, कोई चीज रखा गया है, उसको लिपपोत करके खत्म कर दें। तो अपने भावों को दूसरे लोग न जान पावे, अपनी सखियों से वर्णन कर रही हैं, लेकिन और लोग भी आ जाते हैं, दूसरी स्त्रियां भी आ जाती हैं, या ससुर घूमते हुए चले गए। तो दूसरे श्लोक में पूरा पूरा छिपा करके बोली थी, परंतु इसमें वे वर्णन करने में समर्थ नहीं हो सकी। ये अपने भाव का वर्णन करने में समर्थ नहीं हो सकी इस श्लोक में। ये प्रश्न होता है कि ये कहती है कि भाई श्री कृष्ण के वेणु विलासी मुख का दर्शन करना यही आंखों का फल है, ये न कह करके उस मुख को पीना खोवे ये फल है, ऐसा क्यों कह रही है? दर्शनम उचित था कहना, लेकिन निपानम नितरां पीतम ये क्यों कह रही है? इसका अर्थ ये है कि अगर आंखों से तृष्णा के साथ, अत्यधिक लालसा के साथ श्री कृष्ण के मुख को देखा जाए तो वह भी पीना ही माना जाएगा। कई बार अक्षी भृंग पिबंत्य श्रीमद भागवत में प्रयोग किया गया है, लोग पीते थे, ब्रज की नारियां और नर और अन्य जगह भी, द्वारका में भी, कुरुक्षेत्र में, हस्तिनापुर में, मथुरा में, सब जगह लोग पीते थे श्री कृष्ण के मुख को, ऐसा कहा गया, स्पष्ट कहा गया। जैसे नौम स्कंध के अंत में कहते हैं श्री सुखदेव स्वामी, जस्याननम मकर कुंडल चारु कर्ण भ्राजत कपोल सुभगम सविलासहासम नित्योत्सवम न तत्पुर दृश्य नित्योत्सवम तत्रिपुः दृश्भिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निमेश्च। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जिन जस्य आननम, जिनके मुख को भ्राजत कपोल सुहगम सविलास हासन, जस्य आननम कुंडल चारु कर्ण, सुंदर कुंडल झूमते रहते थे श्री कृष्ण के कान में, चार कुंडल, जस्यानम मकर कुंडल चारु कर्ण, मकराकृत कुंडलों के कारण जिनके कान और सुंदर लगते थे और गालें झलमल करती थी और उस पर भी सुंदर हास और चितवन, इस प्रकार के श्रीकृष्ण के मुख को देख करके, नहीं श्रीकृष्ण के मुख को नित्योत्सवम नत्त्रिपुर दृश्यभि पिबन्त नारियो नराश्च, नर और नारियां श्रीकृष्ण के ऐसे नित्योत्सव नित्य सुखमय मुख को दृश्यभि नेत्रों से पिबन्त पीते रहते थे और निरंतर पीते रहते थे और न तत्रिपु और कभी तृप्त नहीं होते थे, तृप्त नहीं होते थे तब क्या दुख नहीं, मुदिता मुदित होते रहते थे, आनंद में होते थे, पी करके अच्छे आनंद का अनुभव करते थे, लेकिन बीच बीच में आंखों की पलक गिरने से निमि महाराज पर बहुत क्रोध करते रहते थे, स्त्रियां और पुरुष। स्त्रियों को प्रथम निपात में रखा गया है, नारियो नराश्च, तो श्रीकृष्ण के मुख को देख करके ब्रज की नारियां या अन्य स्थान की नारियां भी निमि महाराज को गाली देती थी कुपिता। निमि महाराज यह सेवा लिए हैं मनुष्यों के या अन्य जीवों के भी आंखों पर वास करते हैं और उनके पलक को गिराते हैं, उठाते हैं, गिराते हैं, उठाते हैं, ये उनकी सेवा है निमि महाराज। तो गोपियां मिमी महाराज पर बहुत कुपित रहती थी, कुपिता निमेश मिमी पर बहुत कुपित रहती थी कि यह क्यों आंखों की पलक गिरा रहा है। तो आंखों के पलक गिरने से कृष्ण दर्शन में व्यवधान होता है, इस बात से बहुत दुख होता था। तो मुख सुधा पी करके बहुत आनंद आता था, इससे आनंद में इसलिए नित्यम पीते ही रहती थी, वो पीते ही रहती थी। और नारियो नराश्च और नर भी पीते रहते थे। ये तो ब्रज की बात है, द्वारका में भी इस प्रकार का उत्सव चलता रहता था जिसके बारे में हस्तिनापुर की नारियां कहती हैं। अहो बत स्वर्जस स्तिरस्करी कुश स्थली पुण्य जसस्करी भुव पश्यन्ति नित्यं जदनु ग्रहेशितं स्मितावलोकं स्वपति स्म जत् प्रजा। अहो यह कुशस्थली द्वारका इस पृथ्वी के जस को बढ़ा रही है, यानी स्वर्ग के कीर्ति को धूमिल कर रही है। ये कुशस्थली स्वर्ग के कीर्ति को नष्ट कर रही है, क्योंकि स्वर्ग में श्री कृष्ण का दर्शन नहीं है। जो दर्शन द्वारका में है, वहां की प्रजा नर नारी सभी श्री कृष्ण को अपना पति, अपना सर्वस्व मान करके और संबंध में बंध करके श्री कृष्ण की प्रजा, जत प्रजा, कृष्णस्य प्रजा, बहुत सुंदर शब्द है, जहां की प्रजा अपने स्वामी के नित्य अनुग्रह और मंद मुस्कान से युक्त, मंद मुस्कान और चितवन से युक्त मुख को पश्यन्ति नित्यम, नित्य देखती रहती है प्रजा, नित्य देखती रहती है। पश्यन्ति नित्यम जदनुग्रहेशितम, अनुग्रह से स्नेह से युक्त दृष्टि से भगवान देखते हैं द्वारकावासियों को, अपनापन के भाव से और परम सुंदर चितवन से देखते हैं। तो उसको वे नित्यम पश्यन्ति, नित्य देखते रहते। कभी कभी तो सुधर्मा सभा से जब भगवान चलते हैं तो लोग चारों तरफ जब देखते हैं, जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता है, जबरदस्ती हटाना पड़ता है। हम तो जाने दो, अभी ऑफिस में थके मांदे हैं, अब घर जाएंगे खाएंगे, तो हटाना पड़ता है। यद्यपि भगवान रथ से चलते हैं सुधर्म सभा के बाद अपने घर जाने के लिए, लेकिन फिर भी रास्ता जाम हो जाता है। देखना ही चाहते हैं कृष्ण को, देखना ही चाहते हैं, यद्यपि उसके पहले भी बहुत देखे हैं, लेकिन देखने से तृप्ति नहीं होती। पश्यन्ति नित्यम जदनुग्रहेषु, किसको देखते हैं? स्वपति, अपने पति को, अपने पति। अगर पति शब्द केवल कहा जाए तभी समझा जाएगा कि द्वारका के ईश्वर हैं, द्वारकाधीश हैं, सबके स्वामी हैं, लेकिन सबके पालक। पति का अर्थ है पालक, स्वपति का अर्थ है जीव पति। श्री कृष्ण वास्तव में आत्मा के पति हैं, पालक हैं। देह पति ही केवल नहीं है, इस संसार में कोई मास्टर है, पति है या मित्र है, भाई, किसका है संबंध? देह का है, लेकिन श्री कृष्ण तो आत्मा के पति हैं। जीव का अविच्छिन्न संबंध है कृष्ण के साथ, अनादि काल से अनंत काल तक रहेगा। तो ऐसे अपने पति को वहां की प्रजा, द्वारका की प्रजा नित्य ही देखती रहती, उनके मुख को हंसते हुए और अनुग्रह से युक्त मुख कमल को देखते ही रहती। और जहां तक पीने की बात है, पीने का जो गूढ़ रहस्य इस श्लोक में है, ये जगह जगह प्रकट हुआ है। गोपियां कहते हैं जिन इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियवानों के जिन इंद्रियों से श्री कृष्ण का मुख, जो वेणुविलासी मुख है, पिया गया, नित्रम पिया गया, यही है आंखों का या इंद्रियों का फल। तो आंख का फल कहेंगे तो नित्रम पीतम का अर्थ तृष्णा के साथ देखना दर्शन, और पीना जैसे क्रियापद है तो इसका अर्थ है अधरामृत पीना। हे सखी, जिन इंद्रियवानों ने अपने इंद्रिय से, अपने मुख से, जिह्वा से, रसनेन्द्रिय से श्री कृष्ण के मुख को पिया है, अधरामृत को पिया है, यही है फल, और कोई दूसरा फल नहीं है। और कोई दूसरा फल कोई माने कि वृंदावन में बहुत आश्चर्य है, बहुत सुंदर वस्तुएं हैं, वृक्ष है, ये है, सब कुछ ठीक है, ठीक है, सौभाग्य है, लेकिन वास्तव में वृंदावन का सार भी कृष्ण है। तो और गोपियों की दृष्टि और लोगों के लिए नहीं जा रही कि न अन्य, ऐसा नहीं है, दृष्टि है कि भाई स्वर्ग में किसी देवता को देखना या देवंगनाओं को देखना, गंधर्वों का गीत सुनना या कुछ भी करना, ये आंखों का फल नहीं, वो तो उनकी दृष्टि वहां जा ही नहीं सकती है। ब्रज में ही श्री कृष्ण के मुख कमल के अलावा और कुछ देखना आंखों का फल नहीं है, ये कह रही मुख्य अर्जुन का ही है। यद्यपि कृष्ण के संबंध से ही इस ब्रज में अनेक लोग हैं और बहुत सुंदर हैं, अनेक वस्तुएं हैं, सब कुछ है और एक से एक सुंदर है, परंतु हे सखी, कृष्ण के मुख का दर्शन करना, कृष्ण के अधरामृत को पीना, यही है इंद्रिय का फल। अतः जिन, अच्छा कब देखना, कहां देखना, ये फल ये भी बता रही है। तो श्री कृष्ण के श्याम सुंदर के मुख को पीना देखना ये फल है। तो हस्तिनापुर की नारियों का वाक्य मुझे याद आ रहा है, तो स्त्रियां ये भी याद करती हैं कि अभी सखी, जिन स्त्रियों के साथ श्री कृष्ण का विवाह हुआ है, ये हस्तिनापुर की स्त्रियां बात कर रही हैं, क्योंकि अपने वर्ग के लोगों के सौभाग्य को देख करके और अधिक लालसा होती है। जो कहती है नूनम व्रतस्ना नहुता दिनेश्वर समर्चितो यस्य गृहीत पाणिभिः पिबन्ती या सख्यधरा मृतम मुहो ब्रजस्त्रियो सम्मुहुर जदाशयः। हस्तिनापुर की नारियां कहती हैं, हे सखियों, जिन बड़भागिनी नारियों के साथ श्री कृष्ण ने पाणी ग्रहण किया है, जो इनकी प्रियाएं हैं, निश्चित ही उन्होंने अनेक व्रतों का आचरण किया होगा, तीर्थ स्नान किया होगा, हवन किया होगा, यज्ञ किया होगा, दान दिया होगा, और उन सुकृतों के प्रभाव से वे इनकी गृहिणी बनी हैं। और इनका कितना बड़ा सौभाग्य है जो पिबंत या सख्य अधरामृतम हो, जो नित्य ही श्रीकृष्ण के अधरामृत को पीती रहती, मुह मुह पीने के बाद और तृष्णा बढ़ती है, तो और अधिक पीने की लालसा होती है, तो बारंबार पीती ही रहती है, श्रीकृष्ण के साथ रहती ही है। ब्रज स्त्रीय समूहर जगाशय, जिसका केवल चिंतन करके, जिसकी लालसा होते ही ब्रज की स्त्रियां मूर्छित हो जाती थी। इस श्लोक में गोपीजनों के प्रेम को और अधिक बताया गया है, जिसके चिंतन करके रात्रि के समय रास विहार आदि में श्रीकृष्ण के अधरामृत पीने का सौभाग्य गोपीजनों को सर्वदा सुलभ रहता था, परंतु दिन के समय रात्रि में पिए हुए अधरामृत की जब उनको याद आती थी तो वे मूर्छित हो जाती थी समूहर जगह से। यहां पीने का एक अर्थ यह भी है, अधरामृत पीना। तो हमारा जीवन व्यर्थ है, हमें इस तरह का दर्शन नहीं मिलता है। वही शब्द है इसमें, तो इसका अर्थ है श्रीपद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अर्थ करते हैं, मैं उसको पढ़ना। ब्रजेश सुतयो मध्य अनु पश्चात वर्तिन जस वक्त्रम वेणुजुष्टम तत् जैर्वा इति वा शब्देन जै दृष्टम स्पृष्टम श्रुतम आघ्रातम जैर्वा नितराम अतिशयेन पीतम। निश्चितम एवं ये लज्जा धैर्य अपि त्यक्त्वा निपीतम तेषाम एवं अक्षिमताम जनानाम चक्षुरादिन्द्रियाणाम साफल्यम नान्येषाम तद अद्य दीयताम कुल धर्म लज्जा भय धैर्यादि व्य जलांजलि इति भाव ननु दर्शन व्रत श्रवणादिकम अस्माकम कुलवती नाम संभवतु नाम वक्त कर्मकम निपानम तो ह्रीमती नाम कथम संभवे तत्राहु अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। तो चक्रवर्ती बाजी कहते हैं ब्रजेश सूत के मध्य में जो दोनों पुत्रों में एक पुत्र जो पीछे चलता है पश्चात वर्तिन जस वक्त्रम वेणु जुष्टम जिसका मुख वेणु से युक्त है तत्व जिनके द्वारा जुष्टम यहां वेणु जुष्टम जुष्ट सब अलग ले रहे हैं चक्रवर्ती पाद जी और सनातन गोस्वामी भी इसको लिए हैं श्रीपाद श्रीधर स्वामी भी जुष्टम जिन लोगों के द्वारा जिनके इंद्रियों के द्वारा कृष्ण का मुख है बांसुरी से युक्त मुख जुष्ट हुआ है जुष्ट का अर्थ है आस्वादित। ठीक है ये जो जूस शब्द है ना अंग्रेजी का ये संस्कृत से भी मेल करता है जूस जूस का अर्थ है आस्वादन करना जुष्ट का अर्थ है आस्वादित इसका अर्थ इंद्रियों से पांच इंद्रियां हैं पांचों द्वारा आस्वादित श्री कृष्ण का मुख कैसे नेत्र द्वारा दृष्ट आंखें आस्वादन करती हैं दर्शन देख करके तो नेत्र ही दृष्टम और त्वचा स्पृष्टम स्पृष्ट श्री कृष्ण का आलिंगन स्पृष्ट गोपीजनों के भाव के अनुसार यहां स्पृष्ट शब्द का अर्थ है कृष्ण का आलिंगन और कृष्ण के गाल को अधर को चूमना यह स्पर्श का यह अर्थ हुआ स्पृष्टम और श्रोतम और श्री कृष्ण के मधुर वचन को सुनना डायरेक्ट उनकी हंसी मजाक सुनना ये गीत सुनना अथवा बांसुरी पर सुनना जो भी श्रोतम और आघ्रातम और उनके चरण उनके मुख कमल से निकलते हुए सुगंध को सूंघना सूंघना अद्भुत सुगंध निकलता है भगवान के अधर से आंख से श्री नासिका से कर्ण से सब से दिव्य सुगंध निकलता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहे हैं कि यदि कहती कस्तूरी चंदन पहले पर चंदन को यदि घिसा जाए फर्स्ट क्लास के चंदन को यदि घिसा जाए उसमें कर्पूर मिलाया जाए कर्पूर और इसके साथ साथ और क्या क्या चीज उसमें और इसके साथ ही साथ उसमें कमल की गंध मिलाई जाए कमल की गंध और क्या क्या गंध और शुद्ध अगर की गंध कई प्रकार के गंध मिलाए जाए तो श्रीकृष्ण के शरीर से अद्भुत सुगंध निकलती है कभी कभी लगता है कमल की सुगंध है कभी कस्तूरी की सुगंध कभी केसर की कभी कुछ कभी कुछ कभी अगरू की सम्मिलित सुगंध। भगवान श्रीकृष्ण कहाँ हैं वन में सखा लोग केवल खोज लेते थे अगर मान लीजिए पूरब में है और पूर्वैया हवा चल रही है और पश्चिम में है तो केवल अगर श्रीकृष्ण चुपचाप छिप जाते थे खेल में तो हवा से जब सुगंध आती थी तो उसी से चले जाते थे पकड़ लेते थे कि यहां पर है ऐसे उनकी स्पेशल सुगंध है जिसको कहते आघ्रातम आघ्राणकम आंखों के द्वारा दृष्ट और त्वक के द्वारा स्पृष्ट श्रवण इंद्रिय के द्वारा कान के द्वारा श्रुत और जिह्वा के द्वारा रसेंद्रिय के द्वारा नासिका के द्वारा आघ्रात यह तो फल हुआ यही है नेत्र का फल। फिर जिन्होंने अपनी जिह्वा से रसेंद्रिय से श्रीकृष्ण के मुख को पिया है, उनके आंख को, उनके गाल को, उनके अधरामृत को जिन्होंने पिया है, फिर उनके विषय में तो कहना ही क्या है सती। बस यही इति शेष है। श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं को शेष पद जुष्ट केवल देखना सुनना ही नेत्रों का फल है सती, फिर पीना इसके विषय में तो कहना ही क्या है। तो वास्तव में जीवन की सफलता और इंद्रियों की सफलता इसी में है गोपीजनों के अनुसार कि श्रीकृष्ण का दर्शन स्पर्श श्रवण अग्रहण और निपान किया। इस तरह से वे वर्णन करती हैं, इसमें उनकी लालसा उनका भाव व्यक्त हो गया है। इसलिए श्रीपद जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि गोपियों ने बहुत कोशिश किया कि उनका भाव खुल न जाए, लेकिन वो बोल रही थी पर अर्थांतर से दूसरे अर्थ से भाव खुल गया। इसलिए दूसरे श्लोक में अपने भाव का पूर्णतः निगुहनन किया, पूर्णतः छिपाया है, जिसमें केवल कृष्ण बलराम का वर्णन किया गया, उनके नाचने का गाने का हास प्रहास क्रीड़ा आदि का वर्णन किया। लेकिन और उसके बाद जो श्लोक है उसमें अपने भावों को छिपा नहीं पाई। तृतीय श्लोक में तो पूरा खुल गया जिसमें वे कहते हैं गोप्य किमाचर दयम कुशलम स्म वेणुर दामोदराधर सुधाम अपि गोपिका नाम। गोपियां ही बोल रही हैं और कहती हैं कि जो अधरा मिलते जो अधर सुधा श्रीकृष्ण की गोपियों का धन है। स्वयं डायरेक्ट मेरा धन है राधा रानी ऐसे न कह करके कहते जो गोपियों का धन है, मतलब हम सबका धन है, उसको ये बेड़ू अकेले भोग रहा है और ऐसा भोग रहा है कि अवशिष्ट रस है जिसमें रस न बचे, बिल्कुल खत्म कर दिया। ये कहने का मतलब निरंतर पीता ही रहता है ये, तो उसने तो पूरा खुल गया, छिपा नहीं पाई, वो छिपाने का प्रयास करती हैं। तो इस तरह से प्रेममयी गोपियों का यह सब उद्गार है और इस ब्रजभूमि में वृंदावन में बैठ करके श्री गोपीजनों के वाक्यों का स्मरण करना स्वादन करना और इसके साथ ही साथ श्रील सनातन गोस्वामी पाद सिद्धो स्वामी आदि आचार्यों ने भक्तों ने इसका आस्वादन किया है तो उनके अनुसार आस्वादन करने में सुगमता है, शब्द को समझने में सुगमता है, भले भाव गंभीर अकस्मात या एकाएक या कम दिन में हस्तगत नहीं हो सकता है, परंतु इन आचार्यों की कृपा से और श्री वृंदावन धाम की कृपा से गोपीजनों की कृपा से धीरे धीरे वो भाव आएगा। पहला तो प्रयास हम भक्तों के यही है कि पहले इसको कहा जाए सुना जाए, पहला तो यही काम करना है, पहले कहना सुनना। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बहुमूल्य अन्न उत्पन्न करना चाहता है तो पहले तो खेत को जोतना पड़ेगा, उसकी घास निकालना, सिंचाई करना, क्या क्या करते करते। तो हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं इस विषय में, मेरे कहने का आशय इस समय जैसे हम सुनने का प्रयास कर रहे हैं, कहने का प्रयास कर रहे हैं, यही है अभिध्येय। इसी को करने के लिए मनुष्य शरीर मिला हुआ है वास्तव में। अन्य बातों में अन्य विचारों में व्यर्थ समय जाता रहता है। मैं तो कोई इस अवसर पर कोई उपदेश की बात नहीं कहना चाहता क्योंकि ये सब प्रसंग ही इतना दिव्य है भव्य है। तो रसिक भक्तों को समझ में बातें आ गई होगी कि वास्तव में गोपीजन क्या कहना चाहती हैं और उनकी क्या लालसा है, श्रीकृष्ण के प्रति उनका कितना अनुराग है, भाव है। नित्य कृष्ण का अधरामृत पान उन्हें सुलभ है, वो देखती हैं कृष्ण का स्पर्श करते, कृष्ण के साथ नाचती हैं, गाती हैं, कृष्ण उनके लिए तरसते रहते हैं, थोड़ा भी समय मिलने पर वे उनको उनसे मिलते हैं या दही छीनते हैं, मक्खन छीनते हैं। तो इस तरह से किसी न किसी उपाय से जेन तेना प्रकार किसी प्रकार से मिलते ही रहते हैं। फिर भी गोपीजनों को ऐसा लगता है कि हमसे कृष्ण से कभी नहीं मिलें, कभी नहीं देखें, हमारी आंखें अतृप्त हैं, रो रही हैं। ऐसे विद्यापति ठाकुर ने लिखा है, राधा रानी कहती हैं कि जन्म अवधि हम रूप निहारल नयनन तिरपित भेल, जब से जन्म हुआ है सखी। यह जन्म अवधि का यह अर्थ है कि जब से हो संभाला तब से मैं प्रियतम श्याम सुंदर को देख रही हूं, लेकिन नयनन तिरपित भेल, नयन तृप्त नहीं हुआ। और ये श्याम नाम, चंडीदास जी कहते हैं कि सही केवा सुनाई लो श्याम नाम, काने रो भीतर दिया मरने पसी लगो आकुल करी लो मोर प्राण। ये श्याम नाम किसने सुनाया, न जानी कतेक मधु श्याम नाम आछे गो बदन छाड़ी ते नहीं पारे। पता नहीं सकी कितने प्रकार के अमृतों को कूट कूट करके श्याम नाम में भरा गया है कि हमारी जिह्वा तो इसको छोड़ ही नहीं पाती है। और कान से जब मैं सुनती हूं तो अरबों खरबों कान प्राप्त करने की लालसा होती है, इस तरह से बोलती है। तो गोपीजनों का जो नित्य महाभाव है श्रीकृष्ण के प्रति, अनुराग है, उसके कारण श्रीकृष्ण की माधुरी वहां प्रस्फुटित होती रहती है। चैतन्य चरितार्थ में कहा गया है कि कृष्ण तो है एक समान सुंदर है, लेकिन भाव के अनुसार उनका सौंदर्य प्रकाशित होता है, वो रसराज है और गोपियां भावमयी है, महाभावमयी है राधा रानी। तो जहां भाव बहुत विकसित रहता है कृष्ण के प्रति, तो वहीं पर कृष्ण का माधुर्य सौंदर्य सब खिलता है, पूर्ण रूप से खिलता है। चैतन्य चरितार्थ में इस बात को बार बार कहा गया है। तो हम भक्तों को चाहिए कि हम लोग इसका आस्वादन करें और भी दृढ़ता के साथ। और बहुत से भक्त जो संस्कृत पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, उनके बहुत बड़ा सौभाग्य वास्तव में। ये तो निर्विवाद है, यदि भागवत के रस का अनुभव चाहिए, भागवतार्था स्वाद जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, पांच महासाधन में एक महासाधन है। और पांच महासाधन के विषय में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इसमें से एक का भी यदि अल्प संग भी करेगा तो उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है, ऐसा वो कहते हैं। इसमें भागवतार्था स्वाद है, भागवत के अर्थों का आस्वादन, भागवत के अर्थ का आस्वादन बिना संस्कृत के नहीं हो सकता है, ये निश्चित है। तो भारत की जो भाषाएं हैं, लोक भाषाएं हैं, जैसे बंगला है, गुजराती, मराठी, हिंदी और भी जो भाषाएं हैं, वो संस्कृत बहुल भाषाएं हैं, उनमें संस्कृत ही है वास्तव में, क्रियाओं का केवल अंतर होता है, शब्द प्रायः संस्कृत के आते हैं। इसलिए इन भाषाओं में भी भागवत का ठीक ठीक आस्वादन किया जा सकता है, इससे भिन्न तरह से भागवत के अर्थ का आस्वादन कर पाना परफेक्ट नहीं होगा, पूर्ण नहीं हो सकता। अतः संस्कृत पढ़ने में रुचि रखनी चाहिए। तो इसके लिए कि हम दशम स्कंद भागवत या संपूर्ण भागवत का आस्वादन कर सके, हम वास्तवन कर, जैसे आपने सुना है श्लोक, किस तरह से संस्कृत में गोपीजनों के भावों को श्रीपद सनातन गोस्वामी व्यक्त किए, जीव गोस्वामी, श्रीपद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, यदि इन शब्दों को नहीं समझा जाए तो अन्य प्रकार से इसका आस्वादन पूर्णतः संभव नहीं है, है लेकिन आंशिक। तो उन भक्तों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, और उनका सौभाग्य है कि जो श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, उन्हें पढ़ना चाहिए, प्रतिदिन पाठ करना और भक्तों के बीच आस्वादन करना, टीकाएं पढ़ना, आपस में विचार करना, सोचना मुश्किल। यही जीवन का काम है, यही है अविधेय, जिसको करना है यही करना है। श्रवण कीर्तन जले कर ऐसे चल, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इस भक्ति लता को श्रवण और कीर्तन के द्वारा सींचना चाहिए। यही एक कीर्तन, मैं कीर्तन कर रहा हूं, आप श्रवण कर रहे हैं, अभी हम श्रवण करते हैं, आप कीर्तन करते हैं। भगवान के नाम का जप करना, कीर्तन करना, गुण गाना, पद गाना, जो बोलना है वह कीर्तन और सुनना श्रवण। श्री कृष्ण के विषय में जितना सुनेंगे उतना ही प्रेम बढ़ेगा। क्या सुनना कि और लोगों ने कृष्ण के विषय में क्या बोला है वह सुनना, जो गोपियों ने बोला, जैसे गोपियां बोली एक श्लोक की व्याख्या आज यहां हुई, इस तरह से 13 श्लोक हैं अक्षण वतान से लेकर के अंत, 13 श्लोक में गोपी जनों का भाव, एक एक श्लोक एक अनंत समुद्र की तरह है, रस से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है। तो इसका आस्वादन करना चाहिए, यह मेरा निवेदन है, उपदेश तो नहीं है, उपदेश देने इस कथा में उपदेश देने का साहस करना है तो अपनी हीनता ही होगी। लेकिन हमको जैसे एक लोभ हो रहा है, लोभ हो रहा है भागवत पढ़ करके लिख करके, तो हम सोचते हैं कि अधिक से अधिक भक्तों को ये रस मिले, ये रस मिले, तो उन्हें कम से कम पात्र लेना चाहिए। और जो संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छा है, उनके पास पात्र है, मतलब लोटा है उसमें दूध डालना है, लेकिन अगर लोटा ही नहीं है तो पाकिट में दूध डालेंगे तो क्षर क्षर गिर जाएगा, नहीं रह पाएगा। तो पात्रता केवल भाषा की ही नहीं मैं कह रहा हूं, भाषा तो एक चीज है लेकिन असली पात्रता तो है श्रवण की लालसा, पढ़ना, ये पात्रता है, श्रद्धा शास्त्र में, श्रीमद् भागवतम में और भगवान श्री कृष्ण में, गोपीजन में, ये पात्रता है। तो अपनी पात्रता बना करके और फिर पात्र में पूर्णम भरना चाहिए। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।